रामाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज गचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रोफेसर स्पॉन फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या आठ निकाल लिया सबने मेरे पीछे बोलिए
नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात यच्छो कमोच्छो सणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धं राज्यं स्वराणाम् अपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमोच्छो सणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमोच्छो सणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्
शब्दार्थ न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ मम मेरा अपन उद्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे भी चाधिपत्यम सर्वोच्चता अनुवाद मेरे पीछे बोलिए मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्री उदयपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरिने निर्विशेषा सुनवादी पाशात देश तारिने
श्लोक निकालिए श्लोक फिर से समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात मैं कोई भी उपाय ऐसा नहीं देख रहा हूं जो कि दूर करे या छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम जो शोक को दूर करे जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अब आप भूमाव सपत्न मृद्धम निष्कंटक पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके भी वो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। राज्यम सुराणाम आधिपत्यम और देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए तो भी मेरा ये शोक दूर होने वाला नहीं है। कोई उपाय नहीं है मेरे शोक को दूर करने का। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे। वे समझ गए थे कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे शरीर को सुखाई दे रही थीं। उन्हें इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान विद्वत्ता उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र
प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कि वा विप्र कि वा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 पयार संख्या 128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्याम वैष्णव सपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी इस श्लोक से बहुत सुंदर शिक्षा निकाल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा कि मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है, देवताओं का राज्य प्राप्त करके भी और पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी, है ना। तो इसका मतलब इससे बढ़ करके और क्या संपत्ति हो सकती है? देवताओं का राज्य प्राप्त हो जाए, मनुष्यों का, पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए, इससे बढ़ करके और क्या भौतिक सफलता हो सकती है? तो प्रभुपाद जी क्या इससे शिक्षा निकालते हैं कि जो भौतिक जीवन के जो कष्ट हैं और शोक हैं वो भौतिक उन्नति से, भौतिक सफलता से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। शोक जो है ना अनेक स्तरों पर है। प्रभु जी कहते हैं पारिवारिक अव्यवस्था से शोक पैदा होता है, सामाजिक स्थिति में भी शोक है, राष्ट्रीय स्तर पर भी शोक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोक है, है ना। तो चाहे व्यक्तिगत मामले में देखा जाए या सामाजिक मामले में और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामले में, किसी भी मामले में देखा जाए तो कृष्ण भावनामृत के बिना कोई हल नहीं है, है ना। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है भाई व्यक्तिगत मामले में तो ठीक है कि कोई व्यक्ति अपने समस्याओं को सुलझा सकता है कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कि आप कृष्ण के भक्त बन गए तो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं तो सुलझ गई, लेकिन सामाजिक समस्याएं कैसे सुलझेंगी, देश की समस्याएं कैसे सुलझेंगी, पूरी दुनिया की समस्याएं कैसे सुलझेंगी, है ना। तो प्रभु भाई क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ही एक उपाय है जिसके द्वारा सभी स्तर पर समस्याएं दूर हो सकती हैं, हल हो सकती हैं। आगे प्रभु लिखते हैं, आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय का मतलब है जब ब्रह्मा जी का भी विनाश होता है ना। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, छीणे पुण्य मर्दलोकम विशंदी। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधा पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है, और कृष्ण भावनामृत की स्थापना करते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत की विधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है शोक दूर करने का। और प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये करके दिखलाया। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया के चेहरे और हमारे शिष्यों के चेहरे, जो हरे कृष्ण के भक्त हैं उनके चेहरे कैसे खिले हुए हैं, और जो जो दुनियावासी लोग हैं उनके चेहरे कैसे मुरझाए हुए हैं, है ना। अब जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश को श्रवण करने की तीव्र आवश्यकता प्रकट कर रहे हैं। क्यों? अर्जुन ने कहा कि और कोई उपाय नहीं, बिना कृष्ण के उपदेश का श्रवण किए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है, चाहे मुझे देवताओं का राजा बना दो, इंद्र का पद दे दो, चाहे पृथ्वी का सम्राट बना दो, शोक दूर नहीं हो सकता है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था, क्या कहा था, शिष्यस्त्यहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण लेता हूं। अब इस श्लोक में वे कहते हैं कि यदि वे श्री कृष्ण से उपदेश नहीं श्रवण करेंगे तो उनका यह शोक जो उनकी इंद्रियों को सुखा रहा है कभी भी दूर नहीं हो सकता। इस संबंध में अर्जुन दो प्रकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि इनके द्वारा भी उनका शोक दूर नहीं हो सकता। कौन सी दो उपलब्धियां हैं इस श्लोक में? पहली उपलब्धि है क्या, अब आप भूमाव सपत्न वृद्धम, पृथ्वी का संपन्न राज्य, असपत्नम का मतलब निष्कंटक राज्य, शत्रु विहीन राज्य। और दूसरी उपलब्धि क्या है, राज्यम सुराणाम आधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य। ये दो उपलब्धियां भौतिकतावाद के इतने ऊंचे धरातल पर हैं जिससे अधिक कोई भी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, इससे बढ़कर कोई कल्पना नहीं कर सकता। भौतिक दृष्टि से कि अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर कोई कल्पना नहीं कर सकता। पहली उपलब्धि है भूमावसपत्न वृद्धम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का समृद्ध और निष्कंटक राज्य। जो व्यक्ति इस जीवन के अतिरिक्त अगले जीवन के विषय में कुछ नहीं जानता, वो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं सोच सकता। अगला जन्म किसने देखा है, क्या जानते हैं? तो इस जीवन में आप अधिक से अधिक कितना पाना चाहते हो, ये क्या पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए मुझे। अगले जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या होगा, तो इस जीवन में हम कितना प्राप्त करना चाहते हैं, इतना और क्या, इससे ज्यादा क्या। मैं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं सोच सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र या नगर का स्वामी बन जाता है तो उसे चिंता रहती है कि दूसरे राष्ट्र या नगर के राजा उसके विरोधी बनकर उसके सुख में बाधा डाल सकते हैं। परंतु यदि वह संपूर्ण पृथ्वी का ही एकमात्र सम्राट बन जाए तो फिर कौन उसके सुखों में बाधा डाल सकता है, है ना। बस और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पूर्व काल में जो अत्यंत शक्तिशाली असुर हुए हैं वे सदैव इसी प्रकार की योजनाएं बनाते रहे। कंस की भी इसी प्रकार की योजना थी। कंस अपने जीवन में सबसे बड़ा कांटा किसको समझता था? कृष्ण को। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा कांटा समझता था अपने जीवन में। उसने सोचा यदि मैं श्री कृष्ण को किसी प्रकार मरवा डालूं, क्या समझे, यदि श्री कृष्ण को किसी प्रकार मरवा डालूं तो फिर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में मुझे कोई बाधा नहीं रहेगी, बस मेरा सब काम सफल, कृष्ण को अगर मैं मरवा डालूं तो। उसने अक्रूर जी से कहा, क्या कहा अक्रूर जी से, जब ये दोनों कौन कृष्ण और बलराम मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों का वध कर दूंगा। फिर क्या है, वसुदेव और जितने भी संबंधी हैं वो सब शोक में डूबे रहेंगे तो उनको मैं मार डालूंगा, फिर क्या दिक्कत है मुझे, इनको मारने में तो कोई दिक्कत नहीं है वसुदेव को और इनको। अगर किसी प्रकार कृष्ण को अगर मैं मार दूं तो मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को भी क्या करूंगा, मार डालूंगा, वो क्या कर लेंगे, पहले से ही कैद में है, बंद है, तो उनको मारने में कोई परेशानी नहीं मुझे। तब हे मित्र, इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई कांटा नहीं रहेगा, जरासंध मेरा प्रिय ससुर है, तो फिर क्या है, पूरी पृथ्वी का राज्य मेरा ही तो हुआ है, जरासंध का जो राज है वो मेरा ही है क्योंकि मेरा ससुर है वो, और मेरा प्रिय मित्र द्विविध है, और वैसे ही संबरासुर नरकासुर और बाणासुर भी मेरे मित्र हैं, तो फिर क्या, फिर कहां कांटा रहा, फिर कुछ कांटा नहीं है मेरा। मैं इन सबों का उपयोग अपने शत्रुओं का वध करने के लिए करूंगा और तब मैं सारी पृथ्वी पर शासन करूंगा। इसी प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा से सिकंदर, हिटलर और नेपोलियन ने भी योजनाएं बनाई, क्योंकि वे यही समझते थे कि यदि वे संपूर्ण पृथ्वी के शासक बन जाएंगे तो वे सुखी हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग नहीं मानते हैं कि अगला कुछ जन्म है और इस जीवन के कर्म के द्वारा अगला शरीर प्राप्त होगा, है ना, तो बस ये चीज इसमें जो है ना मैं सुखी हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 3रे अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किस जगत के राजाओं को पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में व्यस्त देखकर पृथ्वी देवी हंसते हुए कहती है। क्या समझे, पृथ्वी हंसती है जब वो देखती है कि मूर्ख लोग क्या चाहते हैं, अवाप भूमा अवसा पत्न वृद्धम, पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, तो पृथ्वी देवी हंसती है, क्यों हंसती है कि पानी के बुलबुले हैं मेरे पर अधिकार करना चाहते हैं, पृथ्वी देवी हंसती है कि इनका शरीर क्या है, पानी के बुलबुले के समान है और मेरे ऊपर अधिकार करना चाहते हैं। हंसती हुई कहती है, जरा इन राजाओं को तो देखो जो मृत्यु के हाथों में खिलौने जैसे हैं, मृत्यु के हाथों के खिलौने हैं फिर भी ये मुझ पर विजय पाने की इच्छा कर रहे हैं। ये महान शासक भौतिक कामेच्छा के कारण हताशा और असफलता को प्राप्त होते हैं, ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के शरीर में अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं, जबकि उनका यह शरीर जल पर तैरते हुए फेन के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, देख नहीं रहे हैं सामने मौत है और पृथ्वी का आधिपत्य चाहते हैं। चूंकि इन नेताओं के हृदयों में बड़ी बड़ी आशाएं हैं अतएव ये पास ही खड़ी प्रतीक्षारत मृत्यु को नहीं देख रहे हैं। यद्यपि प्राचीन काल में बड़े बड़े पुरुष तथा उनके वंशज मुझे छोड़कर चले गए। कौन कह रहा है? पृथ्वी देवी कह रही कि मुझे छोड़कर चले गए पहले सब, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जीतने के लिए ये भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं। पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई अपने भाई से विरोध करता है। ये लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, ये सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख ये तेरी नहीं है। इस तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं और मर जाते हैं। मैं ये पृथ्वी देवी वास्तव में श्री कृष्ण की पत्नी है तथा श्री कृष्ण ही इसके स्वामी हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे पृथ्वी को भोगने की इच्छा ना करके पृथ्वी को नमस्कार करते हैं। क्या माता है, माता को तो नमस्कार किया था, भोगा थोड़ी जाता है। वे कहते हैं हे पृथ्वी देवी, तुम चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हो, इसलिए यह समुद्र तुम्हारी कमर की मेखला है तथा पर्वतों के समूह तुम्हारे स्तन हैं। हे विष्णु पत्नी, तुम्हें नमस्कार है। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समोस्तु में। जिस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि यदि उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो भी उनका शोक दूर नहीं होगा, उसी प्रकार भागवत के चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज को जब भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य करने का वरदान दिया तो ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं हुए। अब देखो अर्जुन की तुलना अब ध्रुव महाराज।